क्यास और इजमा की क्या सूरतें हैं, क्या इज्तहाद को ज्यादा फोकियत है कि क्यास और इजमा की भी कोई अहमियत है?
जी तशरीफ रखें। ये जावेद साहब, ये तीनों टर्म्स जो हैं, एक इजमा, एक कयास और एक इज्तिहाद, इस तीनों टर्म के अंदर अक्सर औकात जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है, ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिएगा।
अभी मैंने बड़ी तफसील से आपको ये बताया कि वो मामला जिनमें अल्लाह और रसूल ने कोई हुक्म नहीं दिया,
ठीक है,
कोई उसूल बयान कर दिया, उसका इतलाक करके नहीं बताया, इस तरह की सूरत हाल में हम अपनी अकल से काम लेके उस हुक्म का इतलाक करते हैं या वहाँ किसी हुक्म का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है,
इसको इज्तिहाद कहा जाता है।
राइट।
तो असल के लिहाज से तो तीन ही चीज़ें हुई, कुरान मजीद, सुन्नत और उसके बाद इज्तिहाद।
ठीक है।
यानी कुरान और सुन्नत दोनों हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ से मिल गए,
ठीक है,
उन्होंने अल्लाह की किताब की हैसियत से कुरान दे दिया, सुन्नत को मुसलमानों के अंदर जारी कर दिया। तो यहाँ तो समझने ही का मसला होगा, फहम ही का मसला होगा, लेकिन इसके बाद जब आप उन मामलात में दाखिल होंगे जहाँ या तो इनके किसी हुक्म का इतलाक करना है या कोई ऐसा खला है कि जिसमें कोई वाज़े बात हमारे सामने नहीं है, तो उसमें जो कुछ भी आप करेंगे वो इज्तिहाद है। मैंने जो सैयदना माज़ की रवायत का हवाला दिया और हमारे तमाम इल्म ने उसी को मौजू बनाया है, तो उसमें भी क्या फरमाया गया है, अजतहद राय, यानी इज्तिहाद ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मैं अपनी अकल को इस्तेमाल करूँगा, ये इज्तिहाद है।
ठीक है।
अच्छा, इज्तिहाद अब आप करने के लिए बैठ गए, इसकी एक सूरत यह है कि आप पहले से किसी हुक्म पर क्यास करते हैं, यानी एक बात रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और मामले में फरमाई थी, आपको उससे मिलता जुलता एक मामला दरपेश हो गया, तो आप उस मामले को सामने रखकर एक एनालॉजी पैदा कर लेते हैं।
राइट।
और क्यास करते हैं। ये जो क्यास है ये इज्तिहाद करने के तरीकों में से एक तरीका है।
अच्छा।
यानी इज्तिहाद में बाज़ औक़ात आप पहले से मौजूद किसी नज़ीर के ऊपर क्यास करके कोई राय कायम करते हैं, बाज़ औक़ात मसलियत को सामने रख के कोई राय कायम करते हैं, बाज़ औक़ात दीन के पूरे फ्रेम को सामने रखकर या उसके मंशा को सामने रखकर कोई राय कायम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें आप इज्तिहाद करते हैं। उनमें से जब आप पहले से मौजूद किसी हुक्म पर किसी चीज़ को क्यास कर रहे होते हैं,
अच्छा,
उसको सामने रख कर उसकी कोई नज़ीर तलाश कर रहे होते हैं, तो इसको क्यास से ताबीर किया।
जैसे भैंसों के हमने जो है वो किया, भैंसों के मामले,
यानी ज़कात में,
ज़कात जो था,
भेड़े भी थी, बकरियां भी थी, ऊंट भी थे, गाय भी थी,
गाय भी थी,
आप हिंदुस्तान में आ गए तो भैंस सामने आ गई, तो अब ये सवाल पैदा हुआ कि भैंस तो अरब में नहीं थी, तो इसकी ज़कात का क्या मामला होगा? अब आपने क्यास करना है, तो देखिए आप क्यास करने में अकल ये कहती है कि भेड़ बकरियों के साथ तो क्यास नहीं किया जा सकता।
सही।
अच्छा, ऊंट भी कुछ बड़ा ही है, तो गाय के साथ ही करेंगे ना,
गाय के साथ,
इसको क्यास कहा जाता है। गोया इज्तिहाद तो वो पूरा अमल है जो आप कर रहे हैं, लेकिन इज्तिहाद करते वक्त आप क्या कर रहे हैं उसमें मुख्तलिफ तरीके हैं मामलात के लिहाज से, उनमें एक तरीका क्यास भी है। क्यास को समझ लेना चाहिए कि ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये इज्तिहाद के तरीकों में से एक तरीका है।
ठीक है।
इजमा का मतलब ये है जो हमारे यहाँ इस्तलाह में इजमा कहा जाता है। देखिए इजमा का लफ्ज़ हमारे यहाँ मुसलमानों के इल्म में दो पहलुओं से बोला जाता है। एक ये कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारीखी तौर पर दीन कैसे मुंतकिल हुआ है।
ठीक है।
तो कुरान मजीद भी इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुआ है, सुन्नत भी इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुई है।
सही है।
यहाँ इजमा का लफ्ज़ बिल्कुल और मानी में बोला जा रहा है, यानी ये असल में तारीखी चीज़ों के मुंतकिल होने के एक जरिए के तौर पर बोला जा रहा है।
ठीक है।
यानी सारे सहाबाए किराम ने इस कुरान की तलावत की, उन्होंने अपनी अगली नस्लों को मुंतकिल किया, आज भी दसियों लोग उसको आगे मुंतकिल कर रहे हैं, वो लिख कर भी मुंतकिल कर रहे हैं, वो बोल कर भी मुंतकिल कर रहे हैं, वो हिफ्स करके भी मुंतकिल कर रहे हैं, तो ये गोया मुसलमानों के इजमा से और तवातुर से मुंतकिल हो रहा है।
ठीक है।
इसी तरीके से नमाज है, पढ़ी जा रही है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त नमाज पढ़ाई, सारे सहाबाए किराम ने नमाज पढ़ी, अगली नस्लों को उन्होंने मुंतकिल कर दी, उनसे उनकी बाद की नस्लों को मुंतकिल हो गई, नस्लन बाद नस्लन इसी तरीके से ये मामला चला आ रहा है। तो इस पर भी लफ्ज़ इजमा या तवातुर बोला जाता है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। एक दूसरी चीज़ जो फिक्र में वजूद में आई है वो ये है कि उलमाए कराम का इत्तेफाक हो गया किसी चीज़ पर,
ठीक,
आइम्मा अरबा का इत्तेफाक हो गया किसी चीज़ पर। सारी दुनिया में मुसलमानों को किसी मौजू पर इकट्ठा आपने देखा कि वो एक ही बात कह रहे हैं, तो इसको भी इजमा कह लिया जाता है।
अच्छा।
आमतौर पर
ठीक
ताबीर इख्तियार कर ली जाती है। ये इजमा इस पर भी हो सकता है कि कोई इज्तिहाद किया गया, मसलन पहली सदी में किया गया, दूसरी सदी में किया गया, आज इस ज़माने में किया गया और सब लोगों ने इससे इत्तेफाक कर लिया, तो इसका इतलाक उस पर भी कर सकते हैं। इसी तरह दीन के किसी हुक्म को समझने के मामले में इत्तेफाक हो गया, यानी कुरान मजीद की किसी आयत की ताबीर का मसला ज़ेर बहस आया اور اس میں لوگوں نے آرا دی، اتفاق ہو گیا. آپ نے تحقیق کرنا شروع کی کہ قرآن مجید کی آیت کا مطلب کیا ہے، آپ نے تمام تفاسیر دیکھیں، ماضی کی دیکھیں، حال کی دیکھیں، سب کو دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو کہہ دیتے ہیں کہ اس پر تو سب کا اجماع ہے. تو یہ اجماع جو ہے یہ بالکل ایک مختلف معنی میں بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اجتہاد پر، کسی تعبیر پر لوگوں کا اتفاق ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے.